मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। आज 17 सितंबर 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं सीधे अपने विषय पर आता हूं और आज के इस विषय में मैं आप लोगों के सामने एक केस को रखने जा रहा हूं। केस को रखने का मतलब एक मामला प्रस्तुत करने जा रहा हूं और सच यह है कि मैं स्वयं इस मामले में शामिल रहा हूं और मामला इस मायने में कि इसके आधार पर हम सिक्के का जो दूसरा पहलू होता है उसे थोड़ा जानने समझने और पहचानने की कोशिश करते हैं। देखें कि सही में सिक्के का दूसरा पहलू होता भी है या यह सिर्फ कहने भर की बात है। और यह जो मैं मामला आपके सामने रखने जा रहा हूं इनफैक्ट बिल्कुल सही है और बहुत पुराना भी नहीं है, काफी नया मामला है। तो अब आप ध्यान से थोड़े से इस मामले को सुने, इसे आत्मसात करें और फिर समझने की कोशिश भी करें। फ्रेंड्स, दिसंबर के आखिरी सप्ताह की कड़कड़ाती हुई ठंड थी और यह ठंड दिल्ली की थी, कड़कड़ाती हुई ठंड। और दिल्ली और भोपाल के बीच में एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है भोपाल एक्सप्रेस, वैसे इसे कहा जाता है निजामुद्दीन भोपाल एक्सप्रेस। ये निजामुद्दीन से, जो दिल्ली का ही एक स्टेशन है, रात के 9 बजे चलती है और सुबह 7 बजे भोपाल पहुंच जाती है। यानी कि आप कह लीजिए कि भोपाल से दिल्ली की जो इस ट्रेन के द्वारा यात्रा है ये रात भर की यात्रा है। आप ट्रेन में बैठें और सुबह होते होते आप भोपाल पहुंच जाएं और वापसी भी बिल्कुल इसी तरह से होती है। यहाँ से भोपाल से वो 9 बजे रात में चलती है और वहाँ आपको सुबह 8 बजे पहुँचा देती है, मतलब केवल रात भर की यात्रा। इसीलिए यह भोपाल के लोगों का बहुत ही पसंदीदा दिल्ली भोपाल के बीच की ट्रेन है। दोस्तों, कड़कड़ाती हुई ठंड, दिल्ली के ठंड को अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकें, आप उसके भुक्तभोगी भी होंगे तो मुझे नहीं मालूम, कड़कड़ाती हुई ठंड, दिन में थोड़ी सी बारिश भी हो चुकी है और फिर वहां कोहरे की क्या स्थिति होती है, कम से कम न्यूज में तो आपने सुना ही है। कितनी सारी ट्रेन्स जो उत्तर भारत की होती हैं रद्द की जाती हैं, फ्लाइट्स रद्द की जाती हैं, और लगभग उसी तरह का माहौल उस समय भी था। अगर आप खबरें सुनना शुरू करेंगे तो पता लगा ये ट्रेन कैंसिल हो गई, वो ट्रेन 22 घंटे लेट है, ये फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है, ये फ्लाइट इतनी लेट है, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। इसमें मुझे यात्रा करनी थी और जब पता किया गया कि ट्रेन जा रही है नहीं जा रही है तो ये सुनकर के बड़ा सुकून मिला कि नहीं, ट्रेन राइट टाइम पर छूटेगी और मैं 8 बजे के आसपास बकायदे निजामुद्दीन स्टेशन पहुंच गया। 8:30 बजे ट्रेन स्टेशन पर आ गई, बड़ी राहत मिली कि चलिए ट्रेन तो आ गई है, अब कम से कम इसमें हम बैठ तो जाएंगे, ये चलेगी तो सही। मित्रों, एक अच्छी बात यह है कि ट्रेन 9 बजे वहां से चलनी शुरू भी कर दी, ट्रेन राइट टाइम पर छूट गई। अब ट्रेन चल रही है। अब देखिए, खासकर जब आप दिल्ली से और ग्वालियर की तरफ बढ़ते हैं तो कोहरा, आप ये मान करके चलिए कि झांसी तक तो आपको काफी तेज कोहरा मिलता है और इसके बाद धीरे धीरे कोहरा थोड़ा कम होने लगता है। अब ट्रेन चल रही है, ठीक है, अब उसमें जितने भी पैसेंजर थे वो ऑलमोस्ट फिर सो ही जाते हैं, पैसेंजर सो गए हैं। लेकिन जब सुबह आंख खुली तो देखा कि भैया हम तो कहीं पहुंचे ही नहीं है, थोड़ी दूर पर ही पहुंचे हैं, मतलब अभी हम लगभग कहीं ग्वालियर के आसपास ही होंगे, मतलब हमारी जो यात्रा है, टोटल जो यात्रा है भोपाल से और दिल्ली की 700 किलोमीटर की है और अभी हम मुश्किल से 250 किलोमीटर के आसपास पहुंचे होंगे और वक्त हो गया है भोपाल पहुंचने का। अब आप थोड़ा सोच करके देखिए कि स्थिति क्या होगी, मतलब मानसिक स्थिति की मैं बात कर रहा हूं, लोगों की मानसिक स्थिति क्या होगी। ठीक है, चलिए धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ने लगी, सरकने लगी, फिर रुकने लगी, फिर आगे बढ़ती थी, फिर रुक जाती थी, कम से कम स्टेशनों पर ट्रेन रुक रही थी और इस तरह से ट्रेन चल रही थी और लगभग आप यूं कह लीजिए कि दोपहर के 2 बज गए। मैं अब 2 बजे की घटना आपको सुना रहा हूं। ठीक है, घर से इस बीच बातचीत हो रही थी लेकिन 2 बजे के आसपास घर से फोन आया मेरी पत्नी का और इससे पहले मैं ये महसूस कर रहा था कि लोगों के दिमाग में एक जबरदस्त किस्म का तनाव पैदा हो गया है। अरे ये तो भारत की ट्रेन है, ये तो ऐसी ही चलती हैं, कभी समय पर पहुंच जाए तो किस्मत की बात है और ये समय पर पहुंचेंगी कैसे, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, ये राजनेता देश को बर्बाद कर देंगे, ये किसी चीज को ठीक से होने नहीं देते। आपको मालूम है कि जब हम निगेटिव तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो हमारी बात कहां से कहां पहुंच जाती है, और वो जो हमारा कंपार्टमेंट था वहां इसी तरह की बातें हो रही थी और मैं उनके चेहरे पर तनाव बहुत साफ तरीके से देख सकता था। जब 2 बजे मेरी पत्नी का फोन आया तो उन्होंने स्वाभाविक है कि हालचाल जानने के लिए कहां पहुंचे यही बात की होगी, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब इस फोन का एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, एक अच्छा मामला बन गया है, चलिए अब इस मामले पर एक अध्ययन करते हैं, एक अच्छा लैब तैयार हो गया, प्रयोगशाला तैयार हो गई है। तो दोस्तों, उधर से मेरी पत्नी बात कर रही थी और इधर से मैं बात कर रहा था, और बात करने का मैंने अपना तरीका बिल्कुल बदल दिया। मैंने जब वो भी पूछती थी कि अरे कितने बजे तक पहुंचेगी, जैसे मान लीजिए, तो मैंने जवाब दिया कि पहुंच जाएगी 7-8 बजे रात तक पहुंच जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूं, आराम से बैठा हुआ हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसी ट्रेन है, खुली ट्रेन है, जगह जगह पर स्टेशन पर ट्रेन रुकी रही है, वहां खाने पीने की चीजें मिल जा रही हैं। इस तरह से मैंने कहना शुरू किया। मैंने कहा कि ये सोच करके देखो कि किराया तो उतना ही है, और उतने ही किराए में पहले जहां मैं केवल 10 घंटे का सफर कर रहा होता, अब मैं लगभग 20-25 घंटे का सफर करूंगा, मुझे कितना फायदा, उतने किराए में इतना लंबा सफर करने को मुझे मिल रहा है। फिर मैंने यह भी कहा कि हम लोग रात में बैठते हैं, सुबह पहुंच जाते हैं, बीच में क्या स्टेशन है, कौन कौन से स्टेशन है, कैसे मैदान है, कौन सी फसलें हैं, किस तरह के गांव हैं, हम लोग देख ही नहीं पाते, और आज ये मौका मिला है कि मैं गांव को देख रहा हूं, खेतों को देख रहा हूं, वहां सरसों के पौधे लहलहा रहे हैं, वहां गेहूं के पौधे लहलहा रहे हैं, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और गांव को जब कोहरे से घिरा हुआ देखो तो बहुत अच्छा लगता है, उसमें ट्रेन धीरे धीरे गुजर रही है, बड़ा मजा आ रहा है। मैंने इस तरह की बातें करनी शुरू की और मैं लोगों को कनखियों से देख भी रहा था, वे मेरी बातें सुन रहे थे। दोस्तों, चलिए मेरी बात खत्म हो गई, और खत्म होने के बाद अब ये मेरी तरफ देख रहे हैं, तो मैंने फिर अपनी तरफ से बात शुरू की। मैंने कहा कि देखिए, मैं तो जहां तक हर महीने इस ट्रेन से सफर करता हूं, और ये ट्रेन हमेशा राइट टाइम पहुंचती है, दिल्ली से जब वो भोपाल आती है या भोपाल से जब ये दिल्ली जाती है तो राइट टाइम ही पहुंचती है। अब ऐसे मौसम में तो स्वाभाविक है कि लेट होगी ही, हाँ लेट बहुत ज्यादा हो गई है ये बात अलग है, लेकिन ये तो अपवाद है। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये ट्रेन रोज ही लेट पहुंचती, लेकिन ऐसा तो मैंने नहीं सुना। तो बोले नहीं नहीं नहीं, कहने का मतलब ये, अब कहने का मतलब कुछ नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब उनका यही था कि रोज ही यही होता है, हमेशा यही होता है। देखिए कितना गलत तथ्य है, कितनी गलत बात वो कह रहे थे। और फिर मैंने कहा कि कल्पना करके देखिए कि हम रात में 9 बजे निजामुद्दीन स्टेशन पहुंच चुके होते और उसी समय यह घोषणा की जाती कि अब यह ट्रेन नहीं जा रही है, कैंसिल होती है क्योंकि मौसम बहुत खराब है, तो हम क्या करते, अपने अपने घरों को लौटते। बहुत लोगों के तो घर भी नहीं होते, सुबह जाकर के रात में लौटते हैं, तो हम होटलों में जाते, पता नहीं कहां हम भटकते, और उसके लिए फिर रात कितने पैसे हमें खर्च करने पड़ते, और फिर हम वापस स्टेशन पर आते, फिर पता नहीं है ट्रेन कब जाती कब नहीं जाती। कम से कम हम अब ट्रेन में बैठ गए हैं, अपने घर तो पहुंच जाएंगे, तसल्ली के साथ, कम से कम ये तसल्ली तो है कि घर तो पहुंच जाएंगे। बोले हां हां, ये तो है, ये तो सही बात है। फ्रेंड्स, पूरा का पूरा वातावरण बदल चुका था, और इसके बाद फिर लोगों ने उस सफर को जितना एंजॉय किया मैं आपको बता नहीं सकता। बस ये है सिक्के का दूसरा पहलू। क्या आपको लगता है कि मैंने इसमें से जो भी पहलू आपको दिखाया है वो गलत दिखाया है, काल्पनिक है, झूठा है, दिलासा देने वाला है, भ्रम में डालने वाला है? आप बताइए। सारे पहलू सही हैं, लेकिन होता यह है कि एक नकारात्मक पहलू हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि दूसरा पहलू दिखाई देना बंद कर देता है, और यहीं से हमारी जिंदगी के संकट की शुरुआत होती है। यहीं से हमारा नजरिया बहुत ज्यादा दुखदायी और नकारात्मक बन जाता है। यदि हम यहां थोड़े से दूसरे पहलू को देख सकें तो हमारा जो नजरिया है एक संतुलित नजरिया बनता है, और सच पूछिए तो यही सच्चा नजरिया है, यही वास्तविक नजरिया है। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।